ये आकाशवाणी है, अब आप आशुतोष मिश्र से समाचार सुनिए। संसद ने आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने कल विधेयक को मंजूरी दे दी। लोकसभा में यह विधेयक पिछले साल दिसंबर में ही पारित हो चुका है। विधेयक का उद्देश्य आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA तथा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SDMA के कामकाज को कुशल बनाना है। विधेयक में NDMA और SDMA को राष्ट्रीय कार्यकारी समिति और राज्य कार्यकारी समिति के बजाय राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर आपदा योजना तैयार करने का अधिकार दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि आपदाओं के आकार और पैमाने में बदलाव हुआ है और प्रतिक्रियाओं को भी उसी अनुसार बदलना होगा। संसद ने बॉयलर्स बिल 2024 पारित कर दिया है। लोकसभा ने कल इसे मंजूरी दी। राज्यसभा ने पिछले वर्ष दिसंबर में ही इस बिल को पारित कर दिया था। यह बिल बॉयलर्स एक्ट 1923 को निरस्त करता है। यह कानून देश में बॉयलर के नियमन, भाप बॉयलर से विस्फोट के खतरे से जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए प्रावधान करता है। लोकसभा ने कल वित्त विधेयक 2025 पारित कर दिया। विधेयक में 35 सरकारी संशोधन किए गए हैं। इनका उद्देश्य टैरिफ को युक्तिसंगत बनाना और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। विधेयक का उद्देश्य वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि विधेयक में करदाताओं को सम्मान देने और कारोबारी सुगमता के लिए करों में राहत दी गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि नए आयकर विधेयक पर अगले मानसून सत्र में चर्चा होने की संभावना है। ओडिशा विधानसभा में कल कांग्रेस के 14 विधायकों में से 12 को कथित दुर्व्यवहार और विधानसभा के नियमों के उल्लंघन के मामले में 7 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया। सत्तारूढ़ पार्टी के मुख्य सचेतक सरोज प्रधान द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव के सदन में पारित होने के बाद यह निर्णय लिया गया। पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को कल नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त कर दिया गया। झारखंड कैडर के 1982 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी गौबा 2019 से अगस्त 2024 तक 5 साल तक कैबिनेट सचिव रहे। उन्होंने भारत के COVID-19 से निपटने और आर्थिक सुधार रणनीतियों सहित प्रमुख नीतिगत निर्णय लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री गौबा ने केंद्रीय गृह सचिव, शहरी विकास मंत्रालय सचिव और झारखंड के मुख्य सचिव के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। प्रधानमंत्री द्वारा स्वीकृति नियुक्त किए जाने के बाद श्री गौबा नीति आयोग के अन्य पूर्णकालिक सदस्यों के समान सेवाएं देंगे। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कल उत्तर प्रदेश के 15 और जिलों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू किए जाने की घोषणा की। इन जिलों में अंबेडकर नगर, औरैया, बहराइच, गोंडा, हमीरपुर, जालौन, कन्नौज, महाराजगंज और प्रतापगढ़ शामिल हैं। डॉ. मांडविया ने कहा कि अधिसूचना जारी होने के साथ ही उत्तर प्रदेश के 75 में से 74 जिले अब ESI योजना में शामिल हो गए हैं। इससे 30 लाख से अधिक बीमित व्यक्तियों और 1 करोड़ 16 लाख लाभार्थियों को फायदा होगा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा इन 15 जिलों में ESI योजना की अधिसूचना देश के प्रत्येक पात्र श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाती है। तेलंगाना में नागर कुरनूल जिले में आंशिक रूप से ध्वस्त श्री शैलम लेफ्ट बैंक नहर सुरंग परियोजना से 1 महीने से अधिक समय बाद बचाव दल ने एक और शव बरामद किया है। जिला कलेक्टर बदावत संतोष ने मीडिया को बताया कि तलाशी अभियान में कल एक शव मिला। इस दुखद दुर्घटना में अब तक 2 शव मिले हैं। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के इंजीनियर मनोज कुमार के रूप में हुई है, जो सुरंग परियोजना निर्माण फर्म में कार्यरत थे। शव को निर्धारित नियमों के अनुसार आगे की प्रक्रिया के लिए सरकारी अस्पताल भेजा गया है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों को सभी फंसे लोगों का पता लगाने तक तलाशी अभियान जारी रखने का निर्देश दिया है। पिछले महीने इस दुर्घटना में 2 इंजीनियरों सहित 8 लोग फंस गए थे। बांग्लादेश की सेना ने एक भारतीय निजी मीडिया आउटलेट द्वारा बांग्लादेश में आसन्न तख्तापलट के दावे संबंधी रिपोर्ट को पूरी तरह से निराधार और भ्रामक बताया है। बांग्लादेश के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ISPR ने कल एक बयान में कहा कि निजी मीडिया आउटलेट ने झूठी और मनगढ़ंत जानकारी के आधार पर रिपोर्ट प्रकाशित की है। इससे पहले बांग्लादेशी सेना प्रमुख जनरल बाकरुज्जमान ने सोमवार को ढाका छावनी में अधिकारियों को संबोधन के दौरान देश में आपातकाल की स्थिति की अटकलों को खारिज कर दिया था। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र की 33वीं बैठक कल चीन के बीजिंग में आयोजित की गई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि बैठक में भारत चीन सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति की व्यापक समीक्षा की गई। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।